نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ہم شروع کریں گے آیت نمبر 49 سے. لیسن کی کنٹینویشن ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم بنی اسرائیل کی ہسٹری پڑھ رہے ہیں. اب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے کہ وہ ہمیں موقع دے کہ ہم اپنے آپ کو ان سے ریلیٹ کرتے ہوئے اپنی اصلاح بھی کر سکیں. اس سے پہلے کہ میں آیت نمبر 49 شروع کروں, آپ کو تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ سمجھاؤں گی. آیت 49 سے لے کر آیت نمبر 62 تک, یعنی جو نیکسٹ لیسن آئے گا, اس میں پوری ہسٹری ہے بنی اسرائیل, جن کو آپ ماضی کے مسلمان کہیں گے, ان کی کہہ لیجئے کہ سوان عمری ہے, ان کی کہانی ہے. ہلکا ہلکا میرے ساتھ چلتے جائیں, جو لکھ سکیں لکھ لیں, نہیں لکھ سکتے کوئی بڑی بات نہیں ہے, لیکن قوموں کی تاریخ کو پڑھ کر واقعی ایک انسان اپنے لیے فائدہ اٹھاتا ہے. تو ہم نے یا بنی اسرائیل اذکروا کی نے بات میں شروع میں بات دیکھ لی تھی کہ بنی اسرائیل انبیاء کرام کی نسل ہے, اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب کے طرف ان کی نسبت ہے, اور یہ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. 12 میں سے 2 بیٹے, ایک کا نام یوسف تھا اور ایک کا نام بنجامین تھا, یہ دونوں ایک ماں سے تھے, باقی 10 بیٹے جو تھے وہ دوسری ماں سے تھے. حالات کے اتار چڑھاؤ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر پہنچا دیا. بنی اسرائیل ملک شام میں رہتے تھے. آپ بالکل چھوٹے چھوٹے پوائنٹس لکھیں, ایک لائن پہ بس ایک ہی جملہ لکھیں تو پھر آپ کو بہت آسانی سے یاد ہو جائے گا. یہ انبیاء کرام کا خاندان ملک شام میں تھا, کنان نام کا ایک گاؤں تھا, وہاں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے. ان کے بیٹے کچھ ایسے حالات سے دوچار ہوئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر پہنچا دیے گئے. شام اور مصر بالکل ایسے ہی ہے جیسے, صرف سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ آپ اور میں اس وقت اوسلو میں, تو یہاں سے کوئی اٹھا کر یو کے یعنی لندن پہنچا دیا جائے, فاصلہ ہے بیچ میں. اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے صبر کا ان کو بدلہ دیا اور وہ مصر کے وزیر خزانہ بن گئے. بادشاہ کے ایک خواب سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ مصر کے اندر کیا بلکہ ارد گرد کے سارے علاقوں میں ایک قحط آنے والا ہے. یوسف علیہ السلام نے اس کے لیے پہلے سے میئرز لیے, میئرز کہتے ہیں اس کے انتظامات کیے, کہ یوسف علیہ السلام نے ایک نہر کھدوائی تھی جس کے ذریعے بارش کا پانی سارا سٹور ہونے لگا. آج بھی مصر میں بحر یوسف کے نام پر وہ دریا موجود ہے, یا نہر کہہ لیجئے یا کچھ ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ ارد گرد میں قحط پھیلا, تو مصر میں خوشحالی تھی کیونکہ اچھے حکمرانوں نے وقت سے پہلے تیاریاں کی ہوتی ہیں. یہی ہوا, جب یوسف علیہ السلام کے ملک میں خوشحالی ہوئی تو بات باہر پھیل گئی. یہی بات ہوتے ہوتے شام میں بھی پہنچی اور بھی پہنچی, تو لوگ اس دور میں مصر میں اس طرح موو ہونے لگے جیسے آج کے دور میں تھرڈ ورلڈ, جس میں ہمارا اپنا ملک بھی آتا ہے, وہاں کے لوگ یورپ یا امریکہ اور کینیڈا میں جاتے ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ وہاں زیادہ سہولتیں, وہاں زندگی کا کہہ لیجئے کہ لائف سٹائل زیادہ ایزی بھی ہے اور واٹ ایور, اور سہولتیں بہت ہیں, تو لہٰذا وہ وہاں موو ہونے لگے. اسی میں کنان سے بنی اسرائیل, یعنی ایک تو حضرت یوسف کے بھائی 12, 70 سے 80 کے قریب اور بھی لوگ ان کی فیملی کے, یہ مصر میں آ گئے. یہ بنی اسرائیل کی ہسٹری کا ایک بہت بڑا دور ہے. یہ بالکل ایسی ہے جیسے کبھی آپ اپنے بچوں کو سنائیں گے نا, تو آپ کہیں گے میں 1974 میں اوسلو آ گئی تھی, یا میرے شوہر آ گئے تھے پہلے پھر میں آئی تھی. قوموں کی زندگی میں یہ بہت بڑا ایک فرق ہوتا ہے کہ جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہوتے ہیں. ملک شام کو آپ لے لیجئے, پاکستان یا سعودی عرب, سعودی عرب لیں تو زیادہ اچھا, پاکستان کہوں گی تو شرم آئے گی مجھے تھوڑی سی باتوں پہ, لیکن شام ایک مسلمان ملک تھا, سمپل ایزی گوئنگ لوگ تھے, اللہ کی وحی اتری, اللہ نے اس کو برکت علی جگہ کا, سورۃ بنی اسرائیل میں ہم پڑھیں گے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ, برکت تھی وہاں, نبی سارے نبی وہاں آئے, موسٹلی پیغمبر وہاں سے اٹھے, بہت سمپل تھی. اب جب وہاں کے سیدھے سادھے مسلمان مصر میں آئے, اب کیا ہوا, یہ ساری اب آپ آج کا اور اگلا سبق دونوں اس کے اندر آ رہے ہیں. آپ امیجن کیجئے کہ پاکستان سے ایک سیدھے سادھے ماحول سے لڑکا اٹھتا ہے اور وہ کسی ویسٹرن کنٹری میں آتا ہے. जब मिस्र में आए ना, तो उस वक्त मिस्र बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क था और वहाँ बादशाहत भी थी। और सबसे बढ़ के जब दौलत आती है ना, तो उसके साथ कुछ मसाइल बन जड़ते हैं। और वो क्या थे कि मिस्र में पेगनिज्म था, मुशरिक थे, यानी आप कह लीजिए कि एक नॉन मुस्लिम मुल्क था। शुरू शुरू में लोग अपने बाप दादा के सिखाए हुए इल्म पर कायम रहे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वहाँ के रंग में रंगे, और ऐसे रंगे कि फिर अपना रंग ही भूल गए। यहाँ जो बात कहने लगी, ये जेम है इस लेसन का, जब मुसलमान कौमें किसी गैर मुस्लिम मुआशरे के रंग ढंग को कबूल कर लें और अल्लाह का रंग उतरने लगे, तो अल्लाह की सुन्नत है कि उस कौम को गुलाम बना देता है और उसके ऊपर दूसरे लोग मुसल्लत हो जाते हैं। मेरे इन जुमलों पे अगर बाद में मौका मिले तो गौर कीजिएगा। अगर बनी इसराइल के वो 40 साल वादिय तीह के थे ना, और उससे पहले की ये हिस्ट्री जो आपको सुना रही हूँ, तो आज भी उम्मत मुस्लिमा किसी भी वादिय तीह से कम दौर से नहीं गुजर रही। आज हमारा भी यही हाल है। जब वो अल्लाह की किताब को भूले और उसको टोने टोटकों का जरिया बना लिया, तो अल्लाह ने वो लोग जो मिस्र में शाही खानदान के नाते से बड़ी इज्जत से रह रहे थे, उनको मगलूब कर दिया। और उसी दौरान मिस्र में फिरौन किस्म के खानदान का कब्जा हुआ। लफ्ज़ फिरौन को भी समझिएगा, फराआ का लफ्ज आता है, फराआ, फराह नहीं, फराआ। बस कह लीजिए कि फिरौन एक टाइटल है, जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या कोई भी नाम आज के दौर में भी आता है। उन्होंने बनी इसराइल को गुलाम बना लिया, जैसे आज हम भी जहनी तौर पे गुलाम तो बने ही हुए हैं और दूसरी तरह से भी काफी हद तक बने हुए हैं। बस जब कौम गुलाम बनती है, तो वो कहते हैं ना कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का जमीर। यही कुछ हुआ इनके साथ, बाप दादा का सिखा सिखाया हुआ इल्म भूले और वहां के रंग ढंग में बहने लगे। फिरौनियत का वो जो दौर था ना, वहां लोग बादशाह को खुदा का अवतार कहते थे। लफ्ज़ फिरौन जो है ना, ये भी असल में इसी तरह की एक बात है। फरा कहते हैं सूरज को, और रे लफ्ज़ है ना, रे रा, अभी आपको उस लफ्ज़ की डिस्क्रिप्शन भी मिल रही है। रा कहते हैं रे को, ये जो इंग्लिश का लफ्ज़ है ना, रेज, सन रेज, तो ये रा ही है। फिरौन लफ्ज़ से मुराद है सूरज देवता का अवतार। मिस्री सूरज की पूजा करते थे। अब उल्टे होके तो सजदा नहीं करेंगे ना सूरज को, तो उनका गुमान क्या था कि सूरज की जगह ये जो बंदा हमारे सामने, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके सामने आ गया, तो लिहाजा ये कौम उनकी गुलाम बनी। अब मुसलमान थे बड़े मेहनती, फिरौन ने इनको गुलाम बनाया तो इनसे बड़े बड़े काम लिए। आगे पूरे कुरान में बारहा पढ़ेंगे, कभी बड़े बड़े इनसे काम करवाता, बिल्डिंगें बनवाता। उस फिरौन को बहुत शौक था तामीर साजी का। होते होते इनको भूल ही गया कि हम कौन है। बस जब कभी कहीं बैठते थे ना, तो फिर आहें भरते थे। इनको वो नबियों का दौर याद आता था। जैसे कभी हमें बैठकर पाकिस्तान का कोई, अपने मुल्कों का कोई बात याद आए, तो फिर हम क्या सोचे। तो ये एक दुआ करते थे अल्लाह से कि अल्लाह वापस अंबिया का दौर भेज। अल्लाह ताला ने काफ़ी अरसा इनको बगैर किसी हिदायत के छोड़ दिया, यानी थी हिदायत लेकिन ये भूल चुके थे, हत्ता के सब कुछ भूल गए। और याद रखिए कि अभी तक बनी इसराइल को तौरात नहीं मिली हुई। तौरात तो अभी मिलनी है, आज के सबक में हम देखेंगे तौरात मिल रही है। यहाँ नोट कीजिए कि अभी तक बनी इसराइल के पास ना तौरात है, ना जबूर है, और कुरान तो बिल्कुल भी नहीं है। पिछले अंबिया कराम के सहीफे थे बचे खुचे, जो उनके तालीमात थी, लोगों ने उसको भुला दिया, तो बिल्कुल ये लॉस्ट थे। अल्लाह ताला ने जब फिरौनियों को इनके ऊपर मुसल्लत किया, अब इनकी दिन रात एक ही ख्वाहिश थी, और ख़ास तौर पर इनके जो बुजुर्ग थे वो कहते थे कि अल्लाह हमारे ऊपर कोई नबी भेज, जिसकी साथ मिलकर हम इस गुलामी से निजात पाएं। वापस कहाँ जाना था इन्होंने, मुल्क शाम। बात समझ है, जैसे आप यहाँ से 20 साल बाद भी जाएं तो किधर जाएंगे, अपने मुल्क जाएंगे ना, मदरलैंड वही था। लेकिन हुआ क्या, अब ये सारी बात कट्ठी है तो इसलिए जरा सा ज़हन रखिए कि जितने अरसे में ये मुल्क मिस्र में रहे, तो मुल्क शाम खाली तो नहीं रहना था ना। जैसे आप यहाँ आ गए तो अब आपके घर खाली तो नहीं है ना, किसी ने या कब्जा कर लिया या किसी को आपने खुद ही दे दिया होगा कि आप बैठ जाए वहाँ, खाली घर को बंद नहीं कर सकते। उस मुल्क में इमालका, आइन मीम अलिफ लाम का हा, इमालका नाम की एक कौम हुक्मरान हो गई, और वो पेगन थे। उन्होंने गोया के मुल्क शाम की भी धज्जियां बिखेर दी। दुख के साथ कहूंगी कि आज नाम के हमारे मुसलमान मुल्क हैं, लेकिन वहाँ हुकूमत कुछ इमालकी टाइप की ही है। अल्लाह सुबहान तआला ने बनी इसराइल से ये वादा किया कि मैं नबियों को भेजूंगा, लेकिन उस नबी या उन नबियों के जरिए तुमने ना सिर्फ ये कि मिस्र से निजात पानी है फिरौनी कल्चर से, बल्कि वापस मुल्क शाम जाना है और वहाँ जो कौम तुम काबिज हो चुकी है उससे जाके जिहाद करो। और ये मेरा वादा है, अल्लाह ने पहले ही रिजल्ट बता दिए थे कि वादा मेरा ये कि जीतोगे तुम, चाहे तुम वहाँ जाकर बस एक तीर उठाओ, तलवार उठाओ या कुछ भी ना उठाओ ना, तुम जीत जाओगे। ये अल्लाह के इनसे वादे थे। होते होते अल्लाह का ये वादा इनके साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सूरत में पूरा हुआ। बड़ी खूबसूरत यहाँ आपको मुमासलत देना चाहूँगी। देखिए, जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बनी इसराइल, जिनके सामने ये सारी कहानियाँ चल रही हैं, वो नबी सल्लम की आमद के मुंतजर थे ना, पीछे से ये कई दफ़ा बात हुई ना। आगे आप आयत भी पढ़ेंगे कुरान की कि अल्लाह ताला हमें वो नबी दे जिसके साथ मिलकर हम मुशरिकीन पर कब्जा पाएं। सेम थिंग हज़रत मूसा के दौर में लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे, यानी इंग्लिश का जुमला मुझे बोलने दे, पीपल वर वेटिंग फॉर हिम। अच्छा, ये भी अल्लाह की एक सुन्नत है, जिस जगह अल्लाह ने किसी दीन का काम लेना होता है ना, तो वहाँ ये तलब और तड़प पैदा कर देता है। आप सीरत पढ़ रहे हैं आजकल मदनी दौर में, मदीना में अल्लाह के नबी क्यों गए? क्योंकि पीपल वर वेटिंग फॉर हिम। अल्लाह ताला मिजान पहले ही बना देता है। अक्सर लोग कहते हैं ये सारा सिलसिला कैसे बन जाता है, ये सारे रिसोर्सेज कौन है, इसको करता कौन है, वो कौन करता है? तो उसके पीछे जवाब है तलब। अल्लाह सुबहान तआला ने तलब दी, मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। अब उनके पैदा होने की कहानियां भी सुन लीजिए कि बनी इसराइल चूंकि गुलाम थे, तो गुलाम नस्ल से जब बच्चे पैदा होते हैं तो जो मालिक हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे और गुलाम पैदा हो गए, गुलामों के बच्चे भी गुलाम होंगे। किसी भी तरह अल्लाह सुबहान तआला ने वो हालात रखे जो मैं आपको आयतों के साथ साथ इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में देती हूँ, लेकिन किस्सा मुख्त हज़रत मूसा भेज दिए गए। अल्लाह का हुक्म देखिए कि मूसा पैदा भी हुए वहीं और फिरौन के महल में ही पले पले। हालांकि फिरौन नहीं चाहता था कि वो ऐसे हों, लेकिन हालात ऐसे बनते कि जहाँ जितनी आयत की ज़रूरत होगी मैं आपको वहाँ उसकी डिटेल्स दे दूंगी, और आप में से बहुत सारों को पता भी है क्योंकि ये बातें हमने बहुत दफ़ा पहले की हुई हैं। खैर, मूसा आ गए। अल्लाह के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम का आना बनी इसराइल की ज़िंदगी का या उनकी हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। वो आ गया मसीहा जिसका इंतज़ार था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवानी में एक हादसाती कत्ल की वजह से मिस्र से मदियन मूव कर गए, अल्लाह का हुक्म था ये भी, चले गए। वहाँ गए, हालात ऐसे बन गए, शादी हो गई। शादी की शर्त क्या थी कि 8 से 10 साल आपने मदियन में रहना है। गोया के मिस्रियों की नज़र से मूसा अलैहिस्सलाम गुम हो गए, ये भी अल्लाह की हिकमत थी बहुत बड़ी इसमें। खैर, अब क्या होता है उसके बाद, मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल के बाद जब मदियन से वापस मिस्र आ रहे थे ना, अपने मदरलैंड कह लीजिए, तो रस्ते में इनको पहली दफ़ा अल्लाह सुबहान तआला ने कलाम किया। सूरह तौहा में हम उसकी डिटेल्स पढ़ेंगे इंशाअल्लाह तआला। वहाँ आप कह लीजिए कि मूसा को नबूवत मिली, तौरात नहीं मिली। ये बहुत लोगों की गलती होती है, इसलिए मैं इस पे पॉइंट आउट बहुत ज़्यादा से शिद्दत से करती हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम को पहले नबूवत मिली थी और अल्लाह ताला ने मूसा को पहला मिशन दिया। लिखिएगा यहाँ मेरा जुमला एक, मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत के 2 मकासद थे। हालांकि हर नबी का एक था, ये मूसा की यूनिक चीज़ है, ये आपको असाइनमेंट में भी सवाल दिया जा सकता है। पहला मकसद क्या था? गुलाम कौम की आज़ादी, जाओ इनको फिरौन से आज़ाद करो। ये एक अपनी जगह प्रोजेक्ट था। यहाँ आप थोड़ा सा लिखिएगा कि ये मूसा का सियासी पहलू है। मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में से आपको सियासत के बहुत सारे नुक्ते मिलेंगे, क्योंकि उनको एक जंग करनी पड़ी अपने वक्त के बादशाह के साथ, जाकर बात करी, तबलीग करी, लेकिन बहरहाल उसने उसको बहुत पर्सनल ले लिया। ये काम पूरा हो गया, मदियन से मिस्र आकर इन्होंने फिरौन को तबलीग की, फिरौन ने मानना नहीं था, उसके दिल में तकब्बुर था। होते होते फिर बिल आखिर अल्लाह ने उसकी मोहलत पूरी की और फिरौन डूब गया। बनी इसराइल को मिस्र से निकाल कर ले जाने की कोशिशों में मूसा अलैहिस्सलाम थे, फिरौन ने पीछा किया, फिरौन डूब गया, बनी इसराइल अब मिस्र से दूसरी तरफ चले गए, बीच में बहरे कुलजम है, ठीक है, एक दरिया है बीच में। بنی اسرائیل جو کب سے منتظر تھے کہ ایک نبی آئے، نہ صرف یہ کہ نبی کو انہوں نے دیکھ لیا بلکہ نبی کے آنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کی موجودگی میں معجزات دیکھے. بظاہر وہ فرعونیوں کے اوپر عذاب آ رہا تھا، لیکن بنی اسرائیل بھی تو اس کے گواہ تھے نا کہ ان کے گھر میں کچھ نہیں ہے اور وہاں پہ بہت طوفان ہے، کبھی مینڈک آ رہے ہیں، کبھی ٹڈیاں آ رہی ہیں، کبھی دس اینڈ دیٹ. خیر، قصہ مختصر، بالآخر فرعون ڈوبا، جس سے آج یہ ابھی ہماری آیتیں شروع ہونے والی ہیں. تو فرعون جب ڈوبا تو بنی اسرائیل نجات پا کر مصر سے دوسری طرف چلی گئی. اب امیجن کیجئے، یہ مصر ہے، یہ دریا تھا اور ادھر وادی تی ہے، ایک ڈیزرٹ ہے، صحرائے سینا بھی اس کو بولتے ہیں، اور اس سے آگے چلے جائیں نا وہ کچن کے پاس تو وہ کہہ لیجئے ملک شام تھا. اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ پورا ہوا نا بنی اسرائیل کے ساتھ کہ دیکھیں اتنے سالوں کی غلامی سے نجات دی. آپ اپنے اوپر لے کر سوچئے کہ 1947 میں مسلمانوں کو نجات مل گئی، اس سے پہلے اکٹھے تھے، جو بھی تھے، حالات جس سے تھے، لوگوں نے کوشش کی، اللہ نے مدد کر دی اور مسلمان وہاں سے نکلے اور اپنے ملک میں آ گئے. اب جب فرعون ڈوبا تو دریا بیچ میں ہے، تو یہ وادی تی ہے، یہاں آ گئے. بس ایک سٹیپ رہ گیا تھا بنی اسرائیل کا کہ الحمدللہ دیکھو بنی اسرائیل، آؤ اللہ کا شکر کرتے ہیں، فرعون ڈوب گیا. یہ 10 محرم کو یہ واقعہ ہوا تھا، تو چلو اب تھوڑا سا ریسٹ کرو، تو چلو گو ہیڈ، اب آگے چلتے ہیں. ہماری ڈیسٹینیشن تو وہ آگے کچن ہے، جہاں پہ کیا ہے، جہاں پہ ملک شام ہے. ان کو پتا تھا کہ ملک شام پہ ایک اور قوم حکمران ہو چکی ہے. اللہ نے کہہ بھی دیا کہ دیکھو تمہیں وہاں جانا ہے اور میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم جیتو گے. میں آپ سے کہوں کہ آپ یہاں سے اٹھیں، کچن تک جائیں تو کھانا لے آئیں، مجھے یقین ہے آپ کو کھانا ملے گا. تو آپ کہ نہیں، یہیں آ جائے تو بہتر نہیں ہے، اچھا وہ خود ہی سب کچھ کر کے میرے آگے ٹرے لے آئے. تو ہمت آپ کو کرنی پڑے گی نا. ان لوگوں میں غلامی کی وجہ سے سستی، کاوڈنس، بزدلی آ گئی تھی کہ غلامی میں قومیں ہمیشہ کمزور ہوتی ہیں. ڈر گئے، کہنے لگے نہیں وہ قوم مالکہ تو بہت بڑی ہے، ان نفیح قومن جبارین فضب ان طو رب کا فقات ہونا قائدون. آپ ان کی یہ بدتمیزیاں صورت اللہ راف میں پڑھیں گے. نبی کو کہتے ہیں ہم تو بیٹھ گئے، یعنی اتنے بھی خوش ہیں کہ فرعون ڈوب گیا، ہم ادھر ریلیکس ہیں. آپ جائیے اور اپنے رب سے کہیے کہ وہ آپ کی مدد کرے، اور آپ جا کے قوم مالکہ سے جڑیں، جھگڑا کریں. جب وہ چلے جائیں گے نا تو ہمیں ایک میسج کیجیے گا، فون کیجیے گا، ہم سارے خوشیاں مناتے ہوئے آئیں گے، فتح ماننے لگے. ایسا تو کبھی نہیں ہوا، فتح کبھی بھی کسی کو ٹرے میں رکھ کے نہیں ملی، چاہے وہ مکہ فتح ہو یا چاہے وہ خیبر کی فتح ہو یا کوئی بھی ہو. بس یہ تھا ان کا وہ جرم، جہاں سے اب آپ کو اپنے اس سبق کی بات سمجھ آنی چاہیے. اللہ کو جہاد کا انکار اتنا برا لگا کہ اللہ نے کہا تم ادھر ہی بیٹھے رہو، تمہیں بیٹھنا ہے نا تو بیٹھو، پیچھے نہیں جا سکتے کیونکہ دریا پھٹا تھا، پھر ختم ہو گیا. یہاں آگے یا آگے جائیں گے یا پھر ادھر ہی رہیں گے. تو یہ وادی جو تھی نا، اس کو وادی تیہ کہتے ہیں، توا بھی اس کا نام ہے. توا بیسیکلی وہ ہے جہاں کوہ طور ایگزیکٹلی موجود ہے. اور آپ نوٹ کریں نا، اگر جو بات میں نے ابھی آپ سے کہی کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین سے مصر آ رہے تھے تو بھی اسی وادی سے گزرے تھے. تو اب یہ، تو اگر آپ نقشہ دیکھیں تو آپ کو بہت اچھی طرح یہ سمجھ آتا ہے، وہ ڈیزرٹ تھا ایک. اب وہاں نہ کھانا نہ پینا، آپ کہہ سکتے ہیں پیچھے چلے جائیں، پیچھے نہیں جا سکتے. میں اکثر یہ بات سوچتی تھی کہ 40 سال ایسے جو صحرا میں جڑے تو ذرا سا سفر کرتے تو کسی کو قریب کے شہر میں چلے جاتے. یہ کوشچن آتا ہے لوگوں کے ذہن میں. پہلی بات ہے، جب اللہ سر پہ ڈالتا ہے نا بندے کے، تو وہ پھر صحراؤں میں بھٹکتے ہیں. دنیا کے ریسورسز ہوتے ہوئے بھی بندوں کو نہیں ملتے، ساروں کے پاس وہ چیز ہوگی، آپ کے پاس نہیں ہونی، سیدھی سی بات ہے. اور آپ جتنی بھی کوششیں کرتے ہیں، اینڈ آف دا ڈے آپ پھر خالی ہاتھ کے خالی ہاتھ ہے. یہ قوم عذاب میں تھی، انہوں نے اللہ کے حکم کا انکار کیا. پچھلی قوموں میں ایک اور بڑی اہم بات ہے، یہ بھی آپ کو انشاءاللہ فائدہ دے گی. پچھلی قوموں نے معجزے مانگے، حضرت صالح کی قوم نے کہا کہ اس پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکلے، ہم اس کو دیکھیں گے پھر آپ کو مانیں گے. اللہ نے وہ کر دیا، تھوڑے دن ٹھیک رہے. کچھ عرصے کے بعد جب اس اونٹنی کے تقاضے نہ پورے کر سکے، اس کو ذبح کر دیا، یا کوشش کی اس کو ذبح کی. اللہ کا وعدہ ہے کہ جب کوئی قوم کوئی معجزہ دیکھتی ہے، معجزہ کہتے ہیں عجز سے، عقل کو عاجز کرنے والی چیز، یعنی دریا کبھی پھٹتا نہیں دیکھا ہوگا لوگوں نے عام طور پہ، لیکن ان کے سامنے دریا پھٹا تو یہ معجزہ تھا. قوم میں معجزے دیکھ کر اگر ایمان نہ لائے نا تو ان کو ہلاک کر دیا جائے گا. یہ سمپل، ویری سمپل رول ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہ بس ختم، اب آپ کے دلوں میں کوئی تیل نہیں ہے. بنی اسرائیل نہ صرف یہ کہ فرعون کے اوپر آئے ہوئے 8,000، ان کا بھی صورت الاعراف میں بہت تفصیل سے قصہ آئے گا، کبھی ٹڈیاں آ جاتی ان پہ، کبھی مینڈک گرتے، کبھی ان پہ خون کا عذاب آتا، कभी सुसरियां पड़ जाती, कभी कहत पड़ जाता, ये जब्ता। और मजे की बात है, ये घर बनी इसराइल का है, तो ये फिरौनी का है। फिरौनियों के घर में मेंढक बरस रहे हैं, तो नेबर में जो फिर जिसको आप कह लें कि बनी इसराइली यानी मुसलमान, उसके घर में कुछ नहीं। कुछ इस किस्म के हालात है, ये वाजे निशानियां थी कि अल्लाह इनको बचा रहा है। फिर सबसे बड़ा मौजजा देखा, फिरौन इनकी आंखों के सामने डूबा, तो चूंकि ये डूबने को देखकर भी नहीं माने, तो अल्लाह ताला ने इनको भटकाया। आगे आप देखेंगे कि इनमें से 70,000 को मारा जा रहा है। ये इनके इर्तदाद की सजा थी। बहरहाल 40 साल के अरसे के दौरान ये वादी थी। मैं अब खाते पीते कहाँ से, मिस्र तो बड़ी फर्टाइल लैंड है। आज भी जिनको इत्तफाक हुआ है वो मेरी इस बात से इत्तफाक करेंगे, जितनी मजे की और खूबसूरत सब्जियां मैंने मिस्र में देखी और खाई हैं, मैंने दुनिया में कहीं नहीं खाई। ऐसे लगता है कि जैसे शीशे की बनी हुई सब्जियां हैं, चमकती खूबसूरत और जमीनों पर रखी। और इतनी सब्जी वो लोग खाते हैं कि आप देखें तो हैरान हो जाए। थे मिस्र में गुलाम, लेकिन खाना भी तो खाते ही थे ना, जो भी फिरौन देता होगा। अब डेजर्ट में आ गए तो खाना कोई नहीं है। ये सब कुछ अब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बहरहाल 40 साल गुजर गए। इसी 40 सालों में मूसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो गया। और हकीकत में किसी नबी के लिए अगर आप अपने दिल में दर्द महसूस करें ना, तो मैं कम अज़ कम अपने दिल में मूसा के लिए महसूस करती हूँ कि अल्लाह के नबी ने भी एक मिसाल दी थी। जब आपको सताया गया तो किसी ने इजहार किया आपसे दुख का, तो आपने कहा नहीं, मेरे भाई मूसा तो मुझसे भी ज्यादा सताए गए। देखिए आमतौर पर नबी क्या कहते हैं, कौमों को तबाह कर दे अल्लाह, इनको बर्बाद कर दे कुछ। और नबी मूसा ने क्या कहा, फफरुक बैनी व बैना, मुझे इनसे बस दूर कर दे अल्लाह, मैं इनकी अब शक्ल नहीं देखना चाहता। और आप देखिए हजरत मूसा का टेम्पर बड़ा स्ट्रांग था। आप हजरत मूसा की पूरी जिंदगी कुरान में जितनी पढ़ते हैं ना, इनको गुस्सा जब आता था तो कंट्रोल मुश्किल था। सूरह काब में 3 वाक्यात था जिन पे गुस्सा आ रहा है। ऐसा नबी 40 साल एक कौम के साथ रहे तो कितना सर नहीं फोड़ा होगा। लिहाजा हजरत मूसा ने आखिर में ये कह दिया था, अल्लाह मुझे ये नहीं चाहिए, ले जा इनको। तो बिल्कुल यही बात कहकर अल्लाह सुबहाना ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को इनके बीच में से उठा दिया। वो बड़े लोग बुजुर्ग जिन्होंने इस जिहाद का इनकार किया था, वो भी सारे इन्हीं 40 सालों के बीच में मारे गए। एक नई नस्ल निकली। अब जो बातें कहूंगा ना, ये बहुत पते की हैं, ये आपके मेरे लिए असल में। अल्लाह सुबहाना ताला चाहते थे एक नई नस्ल तैयार हो। देखिए मैंने जो बात पहले भी कही है, बड़े शौर से कह रही हूँ, इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को एक ऐसी जनरेशन, एक ऐसी नस्ल पैदा करने की जरूरत है कि जो सहरा नशीनी जानती हो, लग्जरियस लाइफ की बिल्कुल आदी नहीं, बिगड़ी हुई नस्ल नहीं चाहिए, कूते ला यमूत, मकसद के साथ जीने वाली। ये बनी इसराइल चूंकि फिरौनियों के साथ रहे, तो वहां उनके रंग ढंग चाल देखकर इनमें बिगाड़ आ गया। अल्लाह ने बुनियादी तौर पे यहां छांटी की है, जिसको आप सिलेक्शन कहेंगे ना। इस सहराई जिंदगी में क्या मिलता, वहां कुछ भी नहीं था। फिर भी देखेंगे आप अल्लाह के इनामात, इन पे पानी है, बारिश बादलों का साया है, मन और सलवार जैसी नेमतें दी। क्यों? अल्लाह ताला इनको सख्त जान बनाना चाहते थे। वो कहते हैं ना कि फितरत के मकासद की करता है तर्जुमानी, बंदा कोहस्तानी या बंदा रेगिस्तानी। कुछ इस तरह का शेर अल्लामा इकबाल का, कि ये फितरत यानी कायनात ने हमें, अल्लाह ने हमें किस मकसद से पैदा किया है, इसको पढ़ना है तो या पहाड़ों में रहने वालों को जाके देख लो, उनकी सख्त जान होती है, पानी ले लेके ऊपर जा रहे हैं, या जमीन का सीना खोद के उसके अंदर से मादनियां निकालते हैं। ये जो हम शहरों में पले फूले और ऊपर के फुकले और अंदर हमारे जान नहीं है, कदम कहाँ उठते हैं हमारे? कभी आप अपने आप को अपने माओ से जरा लेकर देखिए, तो क्या आज फर्क नहीं दिखता आपको? और आपकी माओ को जरा रिलेट करें आपकी नानियों से, तो क्या कौन स्ट्रांग था? और आपकी नानी की भी माँ की कहानियां आपने कभी सुनी होंगी, कौन स्ट्रांग था? दिन ब दिन क्या हो रहा है हमारी नस्लों के साथ? पानी पड़ रहा है, माने ना माने, माइंड ना करे मेरा मेरी इस बात का। लेकिन इस वक्त वो कहते ना कि मिन्नतें करके तेरी मैंने तुझको बिगाड़ दिया। जब तक हम अपने बच्चों की ये स्पून फीडिंग करेंगे ना, और उनको ना मकसद का पता, ना उनको जिंदगी का पता, तो ये ती लंबी हो रही है। उनकी तो 40वें खत्म हो गई थी, हमारा तो 400 साल हो गए इस वक्त किसी की बात के। ये जो धाके चल रहे हैं ना मुसलमानों के, सदियों पे सदियां, अब ये 20th सेंचुरी है, 19 गुजरी, 18 थी, 16 थी। 18 सेंचुरी में तो अल्लामा इकबाल रोते थे, आपको तो 18वीं सदी की शख्सियत है। कभी आप उनके मरसी और उनके रोने पड़ें जो उन्होंने उम्मत मुस्लिमा के उस दौर के हालात पे कहे थे, तो ऐसे लगता है कि अगर आज आते तो उनको हार्ट फेल हो जाता, रोज ही दिल के मरीज बन के हॉस्पिटल पहुंचे होते। वो कहते थे उम्मत की हालत देखकर होता है मेरा दिल सी पारा, मेरे दिल के 30 टुकड़े हो जाते हैं, रोलाती है मुझको जवानों की तनासानी। ये उनका शेर है कि मैं जब अपने यंगस्टर्स को अपने यूथ को बड़ा तन आसान, तन कहते हैं बॉडी को, आसान मैंने रिलैक्स लेयर नेम तो मैं और रिलैक्सेशन में पला हुआ अपने जवानों को देखता हूँ तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। हम अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की तीह लंबी कर ले, जिस दिन इस उम्मत के जवान और बच्चे पर्पस के साथ उठेंगे, सख्त जान होंगे, सहरा नशीनी होगी, उनकी जिंदगी का एक मकसद होगा, तो आप देखेंगे कि फिर वो उम्मत उभरेगी। ये मिशनरी जील और ये मकसद जिस दिन अल्लाह के इस दीन को लेने और देने के लिए मेरे अंदर आ गया, उम्मत की हालत बदल जाएगी। अभी नहीं आया, पूरा नहीं आया अभी हमें भी। आपको बच्चे के खाने से ज्यादा उम्मत के रूहानी खाने की फिक्र पड़ेगी। ये वो चीज है जो बंदे को ताकत, और इसी से ताकत मिलती है, वरना तो वो बातें ही बातें रह जाती हैं। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको समझाया है। अब आप मेरे साथ चलेंगे तो मुझे उम्मीद है काफी हद तक कि आपको ये आयतें अपनी अपनी लगेंगी, कि आप इसके अंदर से देखिएगा कि अल्लाह सुब्हान तआला के, आप बिल्कुल वाकये की तरह बयान करूंगी। और यहाँ थोड़ा सा कमेंट लिख लें कि ये आयतें ऐसे जैसे एल्बम के सफ़े। कोई माँ बैठी है ना, बूढ़ी नानी दादी, तो आने वाले मेहमान को कहती, लाओ मैं तुम्हें अपने बच्चे दिखाऊं। फिर वो एक पेज को, ये मेरा बड़ा है, ये उसके बच्चे हैं, ये इसकी बीवी है, ये अमेरिका अमेरिका में रहता है, ये है वो है, फिर ये इधर है, फिर उसकी कहानी सुनाएगी, फिर अगला सफा, ये मेरा दूसरे वाला है, ये ऑस्ट्रेलिया में रहता है, ये उधर है, ये वो है। यानी पुराने दौर की बातें। कभी आप भी अपने कोई कैमरे पिछली तस्वीरें खोल के बैठ जाए ना, तो आप कहेंगे तब मैं इतने साल की थी, अब मैं इतने की हूँ, ये है वो है, वही हालात इधर है। अल्लाह सुब्हान तआला ने बनी इसराइल का जिक्र बहुत किया है, ये याद रखिएगा। और मैं अक्सर महसूस करती हूँ, अल्लाह के लिए कहने में जरा सा खौफ महसूस करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अल्लाह तआला को बनी इसराइल से प्यार बहुत है। जिसको आप कहते हैं ना कि जिनसे मोहब्बत होती है ना, उनके जिक्र, उनके तज़किरे ज़ुबान पे रहते हैं। आप नोट करके देखें, किसी एक बच्चे से आपको ज़्यादा प्यार होगा, किसी एक भाई से आपको ज़्यादा प्यार होगा, किसी बहन से या किसी एक दोस्त से। बनी इसराइल का इतना तज़किरा, ये अल्लाह की उम्मीदें हैं उन पर। क्यों कानी फद्दल तुकुम अलामीन, कि मैंने तुम्हारे लिए ये जहानों में बुजुर्गी दी। लेकिन वही बात है कि जिनसे उम्मीदें थी या जिन पे नज़र थी, उन्होंने उम्मीदों को पूरा नहीं किया, तो दुख भी ज़्यादा होता है। ये बात होती है। तो इस प्यार को महसूस कीजिए कि अल्लाह ताला ने पीछे अकीदे आखिरत की सारी बातें कर करा के अब क्या कहा, आयत 49, व इस नजना को मिना अली फिरौना, और जब हमने तुमको निजात दी, मिना अली फिरौना आले फिरौन से, क्या करता था वो, यसूमूनकुम सूअल अज़ाबी, वो पहुंचाते थे तुमको बुरा अज़ाब। क्या था वो अज़ाब, युज़बिहून अबनाअकुम, वो ज़िबह करते थे तुम्हारे बेटों को, वयस्तहयून निसाअकुम, और जिंदा छोड़ देते थे तुम्हारी औरतों को, वफी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी, बहुत बड़ी थी। जिसको अल्लाह अजीम कहते हैं, वो अजीम कैसे नहीं होगी, वो तकलीफ बहुत बड़ी थी तुम्हारे लिए। जरा से इसके लफ्जों से खेलते हैं, बहुत ही खूबसूरत अल्फाज हैं। देखिए, व और इस जब, इसमें क्या है, उस गुरु नजैनाकुम का जो लफ्ज है ना, इसमें लफ्ज निजात है। अरबी जुबान में लफ्ज निजात किस चीज के लिए आता है, दो मानों में आता है। नंबर एक, देखिए, नज्जा यू नज्जी, अगर आप देखेंगे ना तो जीम के ऊपर शद है, शद जो होती है ना, ये शिद्दत के लिए होती है, बस इतना ही समझ लें। तफ़ईल, तो इसमें दो मानी है, नंबर एक बार बार निजात देना, और दूसरा इसमें क्या, थोड़ी थोड़ी करके निजात दी। बरसों की गुलामी थी फिरौन की, मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए अल्लाह ताला ने लम्हा लम्हा उनकी मदद की, और बिल आखिर उनको फिरौन के चुंगल से आजाद करवा दिया। नून जीम बॉ इसका रूट होता है। अरबी जबान में निजात के लिए क्या और भी कोई लफ्ज है, बल्कि ये जो लफ्ज निजात मैं भी बोल रही हूँ और आप भी सुन रहे हैं, तो ये भी अरबी का ही है। उर्दू में भी हमें तो लग रहा है ना कि हम उर्दू का इसका तर्जमा करें, लेकिन लफ्ज देखिए, नजई नाकुम, नून जीम, तो अरबी के लफ्ज है ना। इसी तरह अरबी जुबान में निजात के लिए एक लफ्ज और भी इस्तेमाल होता है, सिर्फ अभी नाम लिख लें, बाकी इसका, इसकी डिस्क्रिप्शन और इसकी तफसील वो भी कुरान में जहां आएगा तो वहां बयान करूंगी। दूसरा लफ्ज जो अरबी में इस्तेमाल होता है ना, फाजा, फाज, बस सूरह आल इमरान में आने वाले, वहां आपको इंशाल्लाह बताऊंगी कि मन ज़ुख़्ज़िहा नारी फ़ुदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। तो फ़ाज़, फ़ौज़िया, फ़ायज़ून भी लफ्ज़ निजात से, निजात के लफ्ज़ को आपने समझ लिया कि इसमें अल्लाह ताला ने निजात की बात कर दी। मिन आली फ़िरौन, आले फ़िरौन से। अब फ़िरौन का लफ्ज़ यहाँ आया, पहले लफ्ज़ देखिएगा, मिन आल, आल का लफ्ज़ क्या होता है। अरबी जुबान में दो लफ्ज़ लिखे साइड बाय साइड, आल और अहल। हम उर्दू में कहते हैं ना बीमा अहलो अयाल, अहल कहते हैं अलग अलग अहल होता है, तो अहल क्या है? बच्चे। अहलिया कहते हैं बीवी को, अहल कौन है? बच्चे। बीमा अहलो अयाल, अयाल बच्चों को कहते हैं ना। लेकिन जो लफ्ज आल है ना इधर, ये है हम ख्याल लोग। इसमें जरूरी नहीं कि आपके रियल बच्चे हों, बल्कि लाइक माइंडेड पीपल का मानी लिखिए। जैसे आप एक जगह काम करते हैं तो आप सारे साथी एक सोच के हामिल हैं, आप सारे एक आल में से हैं। जैसे आले इब्राहिम का लफ्ज आता है, आले मूसा का लफ्ज आता है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि बड़े लोग जो होते हैं ना, उनके लिए लफ्ज आल आता है। लेकिन आप किसी बड़े को, सदर को, वजीर को, चाहे वो बुरे रंग में हो, जैसे अब यहाँ फिरौन का लफ्ज आ रहा है तो अच्छा तो नहीं था, लेकिन अपने वक्त में तो वो लीडर ही थे ना, तो उसके लिए ये लफ्ज आ गया। तो मुराद है कि आप अपनी कौम के लोगों को ले आइए। ठीक है, तो आल की असल अहल है, ये उसकी तस्गीर कह सकते हैं, यानी उसको छोटा किया गया है। कुंबा, कबीला, मुत्तबे, अंसार, मानी वाले जो इनकी मदद करते हैं, वो सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, बहरहाल आले फिरौन, लफ फिरौन मैंने थोड़ा सा आपके सामने खोल दिया था। फरा से फिरौन, फिरौन कहते हैं सूरज देवता का अवतार है। और साथ ही साथ यहाँ अल्लाह सुबहाना तला ने यही बात बता दी, मिनाली फिरौन यसूमुनकुम। ये बड़ा खूबसूरत लफ्ज है, थोड़ा सा इस पे तवज्जो कीजिएगा। सामा यसूमु सौमन, किसी पर बोझ डालने को कहते हैं। आप पढ़ेंगे सूरत नहल में एक लफ्ज तुसीमून, जानवरों को चराने के लिए जाना, गेजिंग के मानों में, चुराने नहीं, चराने। अब यहां इससे क्या मुराद है, इसको समझ लीजिए। यसूमूनकुम, वो तुमको चिखाते थे, यानी बनी इसराइल पर जो जुल्म था फिरौन और उसके अहल और अयाल की तरफ से, उसका तذکرہ हो रहा है कि उन्होंने तुम्हें गुलाम बना रखा था, तुमसे बिगाड़ लेते थे, तुम्हें तकलीफ देते थे। ये अलग बात है कि तुम्हें वो समझ आ रही थी कि नहीं आ रही, लेकिन यसूमूनकुम। और आप देखें यसूमून, फिर आगे कुम में, आप थोड़ा सा लफ्जों से खेलेंगे ना, यकीन करें आपको बहुत कुछ मिलेगा। बस यहाँ इतना समझ लीजिए कि मुश्किल और बामुशक्कत काम की तकलीफ देना। अगले लफ्ज आ रहा है सू अल अजाब। सू का लफ्ज क्या है? सा से, सा मानी सही, सख्तर बुरा मानी, यानी अच्छी चीज नहीं है। देखिए सौ कहते हैं लाश को और सू कहते हैं बुराई को, गुनाह को। वो कौन सी होती है और वो कैसे होते हैं? जिसको देखकर कराहत आए, हर वो काम जिसको देखकर कराहत आए वो सू है। इशारा है फिरौन की उन ज्यादतियों की तरफ जो बनी इसराइल पर उस दौर में वो करता था। अब देखिए एक दुआ अल्लाह के नबी ने सिखाई, आउज़ु बिल्लाहि मिन सुइल खुलुक, के अल्लाह मैं पनाह मांगती हूँ बुरे अखलाक से, व मिन सुइल फेल, बुरे फेल से। ठीक है, तो यहाँ मुराद ये है कि बुरा अजाब। अजाब का लफ्ज याद है आपको क्या था? अजबुन से, मिठास को छीनने वाला, वही है। युज़ब्बिहुन को देखिएगा, ज़ब्बहा युज़ब्बिहु तस्बीह, एक लफ्ज है ज़बा। आप क्या करते हैं? बकरे को ज़बा करते हैं। यहाँ क्या लफ्ज? ज़ब्बहा। अरबी जुबान में साउंड बहुत मैटर करती है, इसीलिए तजवीद सही ना हो ना तो बाज़ दफ़ा मानी चेंज होता है। यानी अगर आप यहाँ यूं पढ़ देना सुअल अजाबी युज़ब्बी होना, यानी ज़ब्बहा में बा की शत खत्म करेंगे तो मानी चेंज होगा। जबहुन कहते हैं जानवरों को हलक से काटना, ये जो जानवर का हम गला काटते हैं ना, जबा करना। जिबहुन मजबूहुन के मानी में आता है, सूरत सौफात में आएगा, व फदैनाहु बिज़िबहिन अज़ीम। यहां आया है जब्बहा, तो ऐसे जैसे चॉप करने के मानों में, चॉपिंग, टक 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 गोश्त काटते हैं ना, तो अरबी जुबान में बाब तफाउल में जब कोई चीज जाती है ना तो उसमें कसरत है, यानी तुम्हारे बच्चों को चौप करता था वो। समझ आ गई बात आपको? अब ना का लफ्ज इबन की जमा है, मुजक्कर औलाद के लिए ये लफ्ज आता है, यानी लड़के या बेटे। अब ना अकुम तुम्हारे बेटे, व यस्तहयून और जिंदा छोड़ता था। देखिए लफ्ज यस्तहयून वही है एग्जैक्टली जो यस्तहयी है। यस्तहयी वो एक शख्स शर्माता है, तो यस तहयून का अगर उसी के वजन पे ले जाएंगे ना वजन, तो क्या होगा? वो सब शर्माते हैं। वहां शर्माना था, यहां जिंदा रखना। तो अरबी जुबान में दो मादे हैं, दो रूट्स हैं इसके, हया, और आप देखिए कि हा या हमजा या हा या। हया वाला होगा तो मानी होगा शर्माना, और हा या जो अल्लाह का नाम भी अल हय्युल कय्यूम, तो जिंदा रखना। अब सवाल पैदा होता है आपको, मुझे कैसे पता चला यहां मानी शर्माना है या जिंदा रखना है? तो पीछे का लफ्ज देखेंगे, पीछे जबा था ना, तो जबा का ऑपोजिट यस्ता ही है। क्लियर हुई बात? टेक्स्ट जब सामने होता है ना तो फिर बात समझ आ जाती है। क्या पता चला? यस्तहयूना निसाकुम, तो इस तहया का लव सामने आ गया जिससे पता चल गया कि जिंदा रहने छोड़ती है निसाकुम उनकी औरतों को। निसा किसको कहते हैं? खवातीन को, औरतों को। इसका वाहिद क्या है? इमरातुन। इमरातुन वाहिद है, निसा जमा है। अब थोड़ा सा आयत पे थोड़ी एक नजर डाल दीजिएगा प्लीज, कि आयत में क्या कहा जा रहा है? जिबा करता था तुम्हारे बेटों को, तो जवाब में आगे क्या आना चाहिए था? जिंदा रहने देता था तुम्हारी बेटियों को, तो यहां क्या आना चाहिए था? यस्ताहयूना बनातकुम। एक बात चले, हम कहते हैं इसकी तरकीब बदल देते हैं, ये ऐसे होना चाहिए था युज़ब्बिहूना रिजालकुम व यस्ताहयूना निसाकुम। भाई सिंपल सी बात है, बेटा है तो उसके ऑपोजिट बेटी होती है, औरत है तो मर्द है, लेकिन यहां उधर बेटा है इधर औरत है, ये क्यों रब्त है? तो लिखिए, कुरान इमोशनल टच देता है आपको। यहां बेटे कह के बेटे के लिए दिल में जो मोहब्बत होती है ना, उसको उभारा गया। इसके बरक्स औरतों के जिंदा रहने से औरतों की जो इज्जत और जो मर्दों के अंदर औरतों के लिए गैरत होती है ना, उसको उभारा जा रहा है। यानी तुम्हारी बेटियों को फौरन नहीं मारते थे बल्कि रखते थे, बल्कि वो बड़े होके जब वो औरतें बनती और उनको बांदियां बनाते और उनसे गलत ताल्लुक कायम करते, तो ये मर्दों की गैरत को भरा जा रहा है। अगर यहाँ सिर्फ लफ्ज़ बेटी होता ना, तो जहन में आना था बेटियों को छोड़ देता, और बेटियां तो इधर उधर फुदकती रहती हैं, बड़ी प्यारी स्मार्ट सी लगती है। नहीं, उन बेटियों को जवान होने तक और जवान होने के बाद जो उनसे गलत काम करते थे, उसकी तरफ इशारा है। वफी जालिकुम, और इसमें क्या था? इसमें किस में? जालिकुम का इशारा किस तरफ होगा बोलेंगे आप लोग? यसूमूनकुम, पहुंचाने में, यानी इस तकलीफ पहुंचाने में। बलाउन बला थी। अच्छा, बला क्या है? हमारी पंजाबी की एक बला होती है, एक उर्दू की बला होती है, या अरबी की बला है। पंजाबी में बलाएं किसको कहते हैं? चुड़ैल को, है बला लग रही है। उर्दू में बला किसको कहते हैं? है आफत को। अरबी जुबान में बलाउन का जो लफ्ज़ है, बा लाम वाव से, लिना बलुवा हुम अय्युहुम अहसनु अमला, बलौना हुम बिल हसनात और सय्यात, सूरत अल अराफ में भी आता है। तो बला यहाँ है गम और मुसीबत। बला का मानी होता है कमजोर और पुराना कर देना, पुराना कर देना। आप देखिए, जब गम पड़ते हैं ना, तो जवानी में भी बंदा बूढ़ा लगने लगता है। अरब कहते हैं बलिया सौबु इजा खलिका, यानी फट गया, पुराना हो गया, कपड़ा पुराना हो जाए ना, तो यबली का लफ्ज आता है। एक हदीस में भी आता है, तो मैं अक्सर सोचती थी कि ये लफ्ज क्यों आता है। वो मारूफ, मेरे से आपने बहुत दफा सुनी होगी कि 5 सवाल पूछे जाएंगे, अन शबाबी फीमा अबलाहू, जिनको वो हदीस याद है, तो वो अबलाहू यही बला है। ठीक है, तो गम और हम जो होते हैं ना, ये जिस्म को कमजोर और लागर कर देते हैं। इंसान उसकी वजह से वक्त से पहले बूढ़ा या पुराना दिखने लगता है, इसीलिए इसको कहा गया। अब सवाल पता होता है जालिकुम से क्या मुराद है? अच्छा, जालिकुम को फिर वो याद रखिए, जा लाम का की जगह यहाँ कुम आ गया है। असल अब जा भी बहुत था, लेकिन करीब करके दिखाया था जालिकुम। इसमें कौन सी चीज? ये जालिकुम क्या है? ये सारी तकलीफें जो फिरौन देता था, जो बंदे को मुश्किलात डालता है, फिरौन की तरफ अगर रखे निस्बत, तो मुराद है कि जो मेहनत वो फिरौन बनी इसराइलियों से लेता था। और अगर निजात की तरफ इस जालिकुम को मिला दें, तो मुराद वो नेमत है। क्या पता चला? फिर देखिए, आप मेरे साथ नहीं थे। वफी जालिकुम, और इसमें किस में? क्वेश्चन कीजिए, किस में? तो पहला बात है, तो उस यसूमूनकुम तकलीफ की तरफ जो फिरौन देता था, तो उस तकलीफ में आजमाइश थी, तो ये कौन सी आजमाइश हुई? बुरी। लेकिन अगर आप फी जालिकुम को दे दीजिए नजाकुम में, तो निजात देना अल्लाह का उनको क्या था? आजमाइश थी। कौन सी? अच्छी आजमाइश थी। तो क्या पता चला कि आजमाइश दो किस्म की होती है, अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है। सूरत अल अराफ में, सूरत अल अराफ और अनाम दोनों में बड़ी क्लियरली ये मैसेज खुल के आता है कि हम लोगों को कभी अच्छे दिनों से आजमाते हैं, कभी बुरों से। ये अलग बात है कि हम अच्छे को तो बहुत अच्छा कहते हैं, बुरे को बुरा कहते नहीं है, वटावर या बुरे को हम कहते हैं, अच्छे को नहीं समझते। और मिर रब्बी को मजीम, जिस आजमाइश को अल्लाह कह दे रब की तरफ से बड़ी थी, आप बताइए वो छोटी हो सकती है? अल्लाह सुबहाना ताला ने यहाँ उन सारे वाक्यात का तذکرہ कर दिया जो कि हम अभी बात कर चुके। बनी इसराइल का बच्चा बच्चा इस वाक्य को जानता था, उनको पता था कि हमारे ऊपर, माँ बाप के ऊपर ये जुल्म सितम हुआ था। अच्छा, मजे की बात है कि ये कुम कुम किन को कहा जा रहा है? तुम तुम तुम, ये भी कुरान का एक बड़ा खूबसूरत अंदाज है, कभी हाजिर में कभी गायब में। ये किनको कहा जा रहा है बोल दे? शाबा, कौन से बनी इसराइल? जी, जो मदीना में नबी सल्लम के थे। तो क्या उनके साथ ये सब हुआ था? नहीं, तो फिर उनको क्यों मिलाया गया? उस दर्द को महसूस कराया जा रहा है, जैसे पाकिस्तान बनने से पहले की कहानियां सुनाकर कोई हमें स्टिमुलेट कर दे कि तुम्हें पता है तुम्हारे बाप दादा के साथ क्या हो रहा था। और ये सारा दौर जो अभी तक बात है ना, लिख लीजिए, ये फिर मूसा की पैदाइश से पहले का है। एक वाक्य पूरा हो गया और यहाँ आले फिरौन की ये सारी बातें कर करा के। अब एक छोटा सा सवाल जो हर तफसीर में आपको मिलेगा कि आखिर फिरौन ये बच्चों का कत्ल क्यों कराता था? बचपन से आप यही सुनते आते जाते रहे होंगे कि जी वो इसने ख्वाब देखा था या ज्योतिषी ने उसको बताया था और काहिन ने कहा था। तो पहली बात है कि मुसलमान होने के नाते हमारा आपका कोई इतना ज्यादा इस चीज पर यकीन नहीं है कि ख्वाबों की ताबीर और ये वो है। सिंपल सी इसकी अगर तफसीर करें ना, तो हर दौर के फिरौनों ने मुसलमानों की नस्ल कुशी की। हुआ क्या था, फिर जरा थोड़ा सा अपनी हिस्ट्री में पीछे चले जाएं कि जब मिस्र में आकर ये आबाद हुए, तो जो लोकल नेटिव्स थे उनके लिए तो ये मुहाजरीन ही थे ना, जैसे आजकल सीरियंस आ रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे। अब जब सीरियन किसी भी मुल्क में आएंगे ना, तो फिर शुरू में तो लोग कहेंगे ये गरीब मुहाजर, इनकी मदद करो, रिफ्यूजीज। 10-12 साल बाद क्या होगा? उस मुल्क की मईशत माशरत पे सीरियंस छा जाएंगे। मिसाल दे रही हूँ आपको, उनके घर लोकल से बड़े, जैसे आप अपने इस मुल्क की बात कर लीजिए, यहाँ नॉर्वेजियन से ज्यादा मुस्लिम्स हैं, उनके घरों से बड़े घर इनके घर हैं। ये बात नहीं बर्दाश्त होती लोकल से। आज भी दुनिया में मुख्तलिफ इलाके हैं, बस जैसे श्रीलंका आप नाम सुनते होंगे, आपको पता है कि वहां मुसलमान बहुत थोड़े से हैं, 10%, बट दे आर द मोस्ट रिच कम्युनिटी ऑफ द मुस्लिम्स। और उन पे आप बुधास, ये जो आपने नया पिछले 2 सालों में सुना होगा, बुधास की एक जंग चली और उन्होंने कितनों को मारा, उसकी वजह क्या है? वो कहते हैं है मुल्क हमारा, ये मुसलमान बाहर से आए, इस वक्त सारा कंट्रोल, पैसा, दौलत और वहां की जो ट्रेडिंग है, ये मुसलमानों के हाथ में है। तो जब दुश्मन देखते हैं कि ये बाहर से आए हुए हमारे मुल्क में आके ये हमें आंखें दिखा रहे हैं, तो वो फिर उन पे दिन ब दिन सख्त करते जाते हैं। कानून ये था फिरौन का, उसने उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए। ये जो यसू मोना का लफ्ज है ना, इसमें ये बात छुपी हुई है, यानी वो उनको दबाना चाहते थे। सोम का लफ्ज अरबी में किसी आला चीज की तलब के लिए भी आ जाता है। तो बहरहाल बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करवा दिया। और दूसरी बात भी याद रखिएगा कि अल्लाह की तरफ से है।